Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan, 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 Narayan. परमात्मा तो प्रत्यक्ष है, इन आंखों से, कानों से, इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है वो सब परमात्मा ही है, ये बात निश्चित है। लेकिन बुद्धि इसको पकड़ती नहीं है। क्यों नहीं पकड़ती है? कि इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि और सत्यत्व बुद्धि अपने आत्मा से अलग स्थापित कर रखी है। अब अविद्या के कारण स्थापित कर रखी है, माया के कारण कर रखी है, बेवकूफी के कारण कर रखी है। कारण तो जो भी आप इसके लिए देना चाहो वो दे सकते हो, लेकिन ऐसा कारण देना चाहिए जिसको हटाया जा सके। ईश्वर नहीं चाहता है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो, तो अब तो अब ईश्वर चाहे तभी प्राप्ति हो सकती है, वरना तो हो ही नहीं सकती है। अजी माया बड़ी दुस्तर है, माया के सब चक्कर में, हम ही चक्कर में हैं तो क्या बात है, तो पड़े रहो चक्कर में। फिर शास्त्र कहता है कि ये सब तुम्हारी अविद्या के कारण है, तुम बुद्धि का उपयोग करना नहीं चाहते। महाराज श्री कहते हैं कि तुम ढेले के तो 10 ढेले बनाने में बुद्धि लगाते हो, लेकिन कोई जरा सी सी बात वेदांत की समझनी होती है तो कहते हैं बहुत कठिन है, वेदांत तो बहुत कठिन है। तो असल में बुद्धि का जो उपयोग है वो कहां हो रहा है इसके ऊपर सारा निर्भर करता है। अविद्या कोई राक्षसी थोड़ी है कि उसके सींग हो और वो आके आपको परेशान करते हैं। बुद्धि का डल होना, विचार ना करना, और विचार ना करने की कसम खा लेना, बोले बस विचार ही नहीं करेंगे हम, तो इसी को अविद्या बोलते हैं। अविद्या माने मिथ्या ज्ञान। रस्सी को जब हम रस्सी नहीं जानते तब उसे सांप के रूप में पहचानते हैं। जब सांप पहचान रहे हैं तब भी रस्सी को ही देख रहे हैं, सांप तो वहां है ही नहीं, लेकिन चूंकि रस्सी को रस्सी जानते नहीं है इसलिए कुछ का कुछ देख रहे हैं। तो ये दुनिया दिख रही है, शरीर दिख रहा है, इंद्रियां दिख रही हैं, मन दिख रहा है, प्राण दिख रहे हैं, बुद्धि दिख रही है, ये सब आत्मा ही दिख रहा है, लेकिन चूंकि आत्मा को पहचानते नहीं है इसलिए अलग अलग नाम रख रखे हैं और उनमें सुख बुद्धि डाल रखी है, तो बस उससे सुख लेते हैं। सत्संगों में अक्सर आपको सुनने को यही मिलता होगा कि जीवन का लक्ष्य है सुख। वेदांत कहता है कि नहीं भाई, जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है। सुख तो बुद्धि को कुंठित कर देता है, विचार नहीं करने देता सुख। जैसे सुख मिले वैसे ही विचार करेगा, निष्पक्ष विचार नहीं कर सकता। तो ये जैसे विषयाशक्ति बांधती है, प्रतिबंध माना गया है, ऐसे ही सुखाशक्ति भी प्रतिबंध ही माना गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बार बार यही कहते हैं कि तुम कर्म करो लेकिन फल को मत चाहो, क्योंकि फल में सुख बुद्धि डली हुई है, उसके भोक्ता हम बन जाते हैं तो फिर विचार नहीं कर सकता मनुष्य। तो ये जो पंचकोश विवेक तैतृय उपनिषद ने प्रस्तुत किया, ये असल में हमारे अनुभव का अनुवाद ही है। हम शरीर को देख रहे हैं तो एक कोश बना दिया शरीर को, प्राण चलता हुआ मालूम पड़ता है तो एक प्राणमय कोश बना दिया, फिर मन मालूम पड़ता है तो मनोमय कोश बना दिया, बुद्धि मालूम पड़ती है तो विज्ञानमय कोश बना दिया, और सुख मालूम पड़ता है तो आनंदमय कोश बना दिया, और इन सब के अलग अलग उतने ही अभिमानी हो गए नारे। पांच कोश हो गए, पांच अभिमानी हो गए। असल में तो एक ही अभिमानी है। विचार यदि आप करें तो कोई ऐसा थोड़ी है कि मनोमय का अभिमानी दूसरा है और विज्ञानमय का अभिमानी दूसरा है। मैं ही हूं, जब मन के साथ लग जाता हूं तो मनोमय का अभिमानी हो जाता हूं, बुद्धि के साथ लग जाता हूं तो बुद्धि का अभिमानी हो जाता हूं। तो एक ही, उसी को प्रत्यगात्मा बोलते हैं। तो ये प्रत्यगात्मा, प्रत्यक माने भीतर, भीतर वाला जो आत्मा है, माने ऐसा समझ लो भीतर वाला जो परमात्मा है उसी को प्रत्यगात्मा बोलते हैं। तो ये भीतर वाला परमात्मा आत्मा जो है प्रत्यगात्मा, ये जब अपने को ठीक ठीक प्रत्यगात्मा के रूप से नहीं जानता है तो फिर कोषों में से किसी का अभिमान करके बैठ जाता है कि मैं तो ये हूं। देख अपने ही को रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता नारायण। तो कल आनंदमय कोश का वर्णन हुआ था कि इसके भी सिर है, सीधे पंख है, बायां पंख है, धड़ है, पूंछ है। इसको एक बार फिर दोहरा लें तो अच्छा रहेगा। प्रियमेव शिरा, आनंदमय कोश का सिर क्या है कि प्रियता है। तो आत्मा सर्वप्रिय है लेकिन जब हम उसको, आत्मा को परम प्रेमास्पद नहीं मानते तब फिर किसी दूसरी चीज को प्रेमास्पद मान लेते हैं। इसी को अविद्या बोलते हैं। आवरण शक्ति से तो हम मानते नहीं हैं और विक्षेप शक्ति से दूसरी चीज में मान लेते हैं। बस ये काम चलता रहता है। तो प्रियमेव है तो प्रिय आत्मा, लेकिन अब कितने बार और कितने कितनों के नाम गिना में ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। प्रियमेव शिरा, और इसका दायां पक्ष क्या है? मोद, वस्तु दिख रही है, सुख बुद्धि तो है दिख रही है, तो ये तो हो गई प्रिय, और प्राप्त हो गई तो ये हो गया मोद, मुदित हो गए, माने मन में जो है सुख की छाया पड़ने लगी, ऐसा समझो। और बायां पक्ष है प्रमोद, जैसे उसको भोगना चाहते थे वैसा भोगने लगे तो विशेष मोद हो गया, उसको प्रमोद बोलते हैं। और बोले इसका आत्मा क्या है, माने धड़ क्या है जिसके आधार पर ये पूरा आनंदमय कोश है? तो बोले आनंद। आनंद का अर्थ आपको कल बताया था, सुख सामान्य, माने जो सब सुखों में एक सुख है। इसको ब्रह्मानंद मत मान लेना। सब सुखों में जो एक सुख है, खाने का सुख, पहनने का सुख, जानने का सुख, सुनने का सुख, तो सब में सुख 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 सुख। तो ये जो सब में सुख 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 हो रही है, बस इसी को सुख सामान्य बोलते हैं। ये भी बताया कि जब हम कहीं सुख रख देते हैं और अपने पास नहीं मालूम पड़ता है तो व्याकुलता होती है, उसको ही बोलते हैं दुख। और जब वो सुख लौट आता है जहां हमने रखा था तो वो जो व्याकुलता है वो शांत हो जाती है, तो उस व्याकुलता की शांति को ही हम सुख बोलते हैं। भूख लग रही है, भोजन कर लिया तो क्या हुआ, अच्छा लगा ना। जो अच्छा लगना जो है यही सुख है, और कोई संवेदन नहीं होता सुख का। सारे संवेदन तो माने हुए हैं। जब आप उसमें सुख बुद्धि रखोगे तभी वो उस प्रकार का संवेदन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आनंद माने सुख सामान्य जो है, ये सब सुखों में ओतप्रोत रहता है, इसलिए यही इसका धड़ है, आत्मा है। इसकी पूंछ क्या है माने प्रतिष्ठा क्या है। प्रतिष्ठा अर्थात किसके आधार पर टिका हुआ है, तो बोले ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म के आधार पर टिका हुआ है। अब यहां ब्रह्म शब्द तो दे दिया है, लेकिन फिलहाल ऐसा मान लो आप कि आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वही इसकी प्रतिष्ठा है। सत्स्वरूप ब्रह्म ये तो सभी कोषों की प्रतिष्ठा है, और चित स्वरूप ब्रह्म ये मनोमय विज्ञानमय की प्रतिष्ठा है, और आनंद रूप ब्रह्म ये आनंदमय कोष की प्रतिष्ठा है। और सबकी प्रतिष्ठा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो हाथी के पैर में सबका पैर समा जाता है, तो ब्रह्म कह दो तो सब कुछ हो गया। लेकिन स्पेसिफिकली भी विचार करना चाहिए, आनंद सुख हो रहा है तो सुख की प्रतिष्ठा क्या है। आनंद को ही सुख बोल देते हैं जब वो विषय से आता है, आनंद को ही सुख बोल देते हैं जब वो विषय से आता है। और जब वो निर्विषय होता है माने विषय से तो नहीं आ रहा लेकिन आपको कोई व्याकुलता नहीं है, आप शांति से बैठे हैं, तो वो जो शांति है वो ही आनंद का स्वरूप है। लोगों को शांति में आनंद आता नहीं है वैसे सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। और अब तो ये मोबाइल ऐसा आ गया है कि एक सेकंड जो है शांति से बैठने नहीं देता, या तो खुद करेंगे या दूसरे का आएगा, और नहीं तो हाथ में लेके यूं करते रहते हैं ये शांति से बैठने ही नहीं देता। शांति की कोई कीमत भी नहीं है हमारे हम लोगों के जीवन में। अरे भाई, शांति ही असल में परमात्मा का स्वरूप है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। पांडुक्य उपनिषद कहता है कि यह आत्मा जो है यह शांत स्वरूप है। इसमें चित्त की शांति एक बात है, वासनाओं की शांति एक बात है, और शांति स्वरूप होना ये एक बात है। चित्त की शांति तो योगी लोग कर लेते हैं, वासनाओं की शांति धार्मिक लोग भी कर लेते हैं, उपासक लोग भी कर लेते हैं, और आत्मा शांति स्वरूप ही है, इसमें कोई हलचल है ही नहीं। सारी हलचल आकाश में होती है, आकाश की कोई हलचल नहीं होती है। फिर सुन लो, सारी हलचल आकाश में होती है, आकाश की कोई हलचल नहीं होती। तो ब्रह्म में कोई हलचल नहीं है, आत्मा में कोई हलचल नहीं है। सारी हलचल जो हो रही है वो आविद्यक ब्रह्म का जो स्वरूप है उसमें ही हो रही है। चाहे बुद्धि में मान लो, चाहे मन में मान लो, चाहे प्राण में मान लो, चाहे शरीर में अन्न में कोष में मान लो, सारी हलचल इसी में हो रही है। तो शांति, शांति को ही आत्मानंद और ब्रह्मानंद बोलते हैं। स्वामी शांतानंद महाराज ये आत्मा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्या समुद्र शांत है तब समुद्र है क्या? उसमें लहरें उठ रही हैं तब क्या समुद्र नहीं रहा? ये तो अपने अपने देखने का ढंग है, लेकिन समुद्र क्या है? लहर है क्या? या हलचल का नाम समुद्र है क्या? तो जल का एक अति गंभीर जो राशि है उसको समुद्र बोलते हैं। तो तत्व माने जल, जल तत्व है। तो दृष्टि जो है वो सच्चित आनंद जो तत्व है उसके ऊपर रहने चाहिए। वो जिसका सार सर्वस्व है उसको ब्रह्म बोलते हैं, वही आनंद स्वरूप है, वही शांति स्वरूप है। अब पूर्व पक्षी ये कहता है, हम ही समझ लो, हम ही लोगों की बुद्धि, जो महाराज जी बोलते थे कि ये कोई गौतम कड़ा कपिल ये कोई आदमी हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये तो नाम रख दिए हैं। कभी आपकी बुद्धि में सांख्य उदय हो जाता है, आप ही की बुद्धि में कभी न्याय के अनुसार सोचने लगती है, आप ही की बुद्धि कभी नास्तिक हो जाती है, कभी आस्तिक हो जाती है। तो ये जितने दर्शन हैं इनके आचार्यों के नाम से कोई मतलब नहीं है, ये सब आपके ही नाम है। जिस समय आप जो जैसा सोचते हो आप उसी के अनुयायी हो जाते हो। अगर नास्तिकता मन में आ रही है, अरे ये सब बकवास है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, आत्मा आत्मा आत्मा, जो दुनिया दिख रही है वो सच्ची है, इसमें अपना काम करो, मरना है ही सबको, ये सब नास्तिकता की बात है। जब नास्तिकता मन में आती है ना तो ऐसे विचार आते हैं, और जब आस्तिकता होती है तो कहते हैं हम, बुद्धि कहती है कि हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करना इस जीव का लक्ष्य था, वो तो प्राप्त किया नहीं, अब किस में फंस गए? अब ये आस्तिकता है ना। और बोले अब हम उसको जान के रहेंगे, तो बोले जान लिया कि जान लिया कि क्या जान लिया कि दूसरों को जला रहे हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, ते जाने जेह देह जनाई, लेकिन कसौटी भी तो बता दी ना उसकी, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बस अब आपका मैं जो है वो ब्रह्म रूप से स्फुरित होता है या जीव रूप से स्फुरित होता है या शरीर रूप से स्फुरित होता है या मेरे तेरे के चक्कर में स्फुरित होता है, देख लो। अगर ब्रह्म रूप से स्फुरित होता है तो आपको ज्ञान हो गया, और अदरवाइज होता है तो अभी तो मंजिलें बाकी हैं ना। बोले कभी कभी तो मैं ब्रह्म हो जाता हूं, साफ मालूम पड़ता है कि मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, और कभी कभी, बोले कि अधिकांश समय तो यही रहता है कि मैं फला हूं, मुझे ये करना है ये नहीं करना है। फिर दिलासा देने के लिए लोग ऐसे मन को समझा लेते हैं, ये तो सब मिथ्या है, ये अगर आ गए मन में शरीर भाव आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, जीव भाव आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो सब मिथ्या है, मैं तो ब्रह्म हूं। जिसको आप मिथ्या कह रहे हो वो ब्रह्म है कि नहीं है? आखिर आप मिथ्या कह किसको रहे हो? सांप किसको कह रहे हो आप? रस्सी को ही तो सांप कह रहे हो ना, तो मिथ्या को भी तो आप ब्रह्म ही समझो। मिथ्या ऐसा मतलब असत को मिथ्या नहीं बोलते हैं। मिथ्या माने कुछ प्रतीत तो हो रहा है लेकिन वो क्या है क्या नहीं है इसमें संशय है। व्यवहार करने के लिए जैसे बीमार पड़ गए तो बोले गोली खा लो, गोली खा ली ठीक हो गए, बोले इसने बड़ा फायदा किया था अब ये सारी जिंदगी गोली खाते ही रहेंगे, तो वो औषधि नहीं कहलाती ना रहे, वो तो आपकी खुराक बन गई, फिर उसका काम ही करना बंद कर देगी। इसी तरह से जो हर समय एक ही बात को दोहराते रहते हैं ना, तो शुरू में तो बड़ा आनंद आता है उसमें, उसका असर भी मालूम पड़ता है, लेकिन फिर वो निष्प्राण हो जाता, उसमें कोई जीवन नहीं रहता। महाराज श्री बोलते थे कि जिस दिन हमको कोई नई प्रक्रिया नहीं सूझती उस दिन हमको लगता है आज का दिन बेकार हो गया। माने जैसे पेट ही तो भरना है तो रोजाना रोटी क्यों खाते हो? तो बोले रोटी भी खाओ लेकिन कभी कभी हफ्ते में एक दिन दो दिन थोड़ा व्यतिक्रम भी करना चाहिए। अब वो सिस्टम को रोटी की आदत पड़ गई, रोटी चावल वालों को चावल की आदत पड़ जाती है, फिर वो उनका लाभ होना बंद हो जाता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है ना, ये नए नए ढंग से अगर आप करोगे तो इसमें आनंद आपका आता रहेगा। और वही दृष्टांत, वही उदाहरण, वही प्रक्रिया, आपकी बुद्धि में इतना सामर्थ्य होना चाहिए। और हमारी कोई बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि किसी की बपौती नहीं है नारायण, ये तो विज्ञान में कोश में बता चुके कि जो महत्तत्व है वो इसकी प्रतिष्ठा है, सारा ज्ञान वहां से निकलता। तो वो महत्तत्व तो कहीं मर थोड़ी गया। एक थे टीचर तो वो कहते थे कि पूरा पूरा ज्ञान शिष्य को नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर पूरा दे दिया तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। एक महात्मा महाराज जी का टेप कर लेते थे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता था उन्हें, हर समय उनके सामने जो है कोई एक वाक्य भी बोले सो ही उसको लगा दे टेप रिकॉर्डर को, परंतु वो गुस्सा तो होते नहीं थे महाराज जी। तो बोले कितना भरोगे, हम तो जितनी बार बोलेंगे उतना ही नया बोलेंगे। भाई चर्वित चर्वण करना पड़ता है ना, एक दफे चबा लो फिर चबाओ फिर स्वाद आएगा, फिर चबाओ फिर स्वाद आएगा, नए नए ढंग से, कभी इधर की डाल से, कभी इधर की डाल से, कभी सामने की डाल से। तो ब्रह्मानंद जो है वो क्या है ये प्रश्न है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसके ऊपर बात आ रही है। इसकी प्रतिष्ठा जो है वो ब्रह्म है, इसकी आनंदमय कोश। और ब्रह्म माने ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद ही इसकी प्रतिष्ठा है। अब पूर्व पक्षी कहता है, माने हमारी बुद्धि कहती है कि तुमने सबका तो निषेध कर दिया, अब फिर ब्रह्मानंद ले आए कि इसकी प्रतिष्ठा ब्रह्मानंद है, तो वो भी अगर अनुभव का विषय बनेगी तो वो तो आनंदमय कोश में ही बनेगा ब्रह्मानंद। तो आनंदमय कोश रहा, ब्रह्मानंद क्यों बोलते हो? जो चीज इन पांचों कोशों में अनुभव नहीं हो सकती है वो है ही नहीं, ये पूर्व पक्षी का कहना है। और ये इसी में से शून्यवाद निकलता है नारायण, बौद्धों का जो शून्यवाद है। महाराज श्री ये भी कहते थे कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को बौद्ध नहीं बोलते हैं। जो बुद्धिवादी लोग हैं माने अपनी बुद्धि का ही भरोसा करते हैं, बुद्धि तो अन्य व्यतिरेक से सोचती है, कारण कार्य सोचती है, इससे ज्यादा तो सोच नहीं सकती। इंद्रियां जो इन्फॉर्मेशन देती हैं उसके अनुसार सोचती है, तो उसकी तो शक्ति सीमित है। अगर आप केवल बुद्धि से ही आत्मा का परमात्मा का चिंतन करोगे तो अंत में शून्य में ही जाओगे। तो ये बौद्ध दर्शन का मतलब है बुद्धिवाद का दर्शन। तो बोले पांचों कोश और पांचों पुरुषों के अलावा और तो कुछ है ही नहीं, इसलिए शून्य ही बचता है। इसलिए अच्छा ये है कि ब्रह्मानंद की चर्चा छोड़ो, इस आनंदमय कोश आनंदमय पुरुष को ही ब्रह्म मान लो। आपको सुख आ गया, अब इसमें बुरा मत मानना कोई भाई, जो उपासना सिद्धांत है उसमें सुख की ही वैल्यू है सारी। अगर आपको मजा आ गया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या है इसमें, तो बोले बहुत मजा आया। ये बहुत मजा आ रहा है, ये उपासक वृत्ति जो होती है ना वो मजा ढूंढती है, आनंद सुख ढूंढती है, सुख की कीड़ी है ये उपासना जो है, ये सुख की कीड़ी है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्या है, भगवान का नाम लो और आनंद पूर्वक लो, बस इसी से कल्याण हो जाएगा, यही मोक्ष हो जाएगा। तो भाई वो विभाग दूसरा है, वो विभाग दूसरा है। सुख को या सुख के अभिमानी को ब्रह्म जानना ये अज्ञान है, ये कोई ज्ञान नहीं है।